ओम शांति।
आज का जो विषय दिया गया है, अखंड महादानी कैसे बने। आज की वाणी सबने सुनी, सुबह को बहुत अच्छी वाणी थी, तो सुनते हुए संकल्प चला के बाबा ने बहुत अच्छी तरह पहले स्पष्ट कर दिया है, दानी बनना है। किस लिए दानी बनना है तो किस लिए बनना है, महादानी बनना है तो किस लिए बनना है, और वरदानी बनना है तो किस लिए बनना है। तो आज की वाणी के अनुसार क्या महावाक्य थे याद होंगे कि अपना जो अनेक जन्मों का माया का ग्रहण है उससे छूटना है तो दानी बनना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। मैं समझता हूं सभी ब्राह्मण जैसे ही बाबा का परिचय पाते हैं और बाबा से दिव्य बुद्धि प्राप्त करते हैं कि अब हम ईश्वरी ज्ञान और योग के द्वारा फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ने के लिए पहुंच गए हैं, ईश्वरी दरबार में पहुंच गए। तो देवता बनना है तो जो देवता के गुणों के अनुकूल नहीं है उसका त्याग करना है, और उसका त्याग करना सबसे सहज तरीका बाबा ने बता दिया। द्वापर युग से दान करने का संस्कार तो है ही, भक्ति मार्ग में दान तो करते ही आए, लेकिन ग्रहण नहीं छूटा। इस समय जब स्वयं शिव बाबा खुद सन्मुख आकर श्रीमत देते और खुद कहते हैं बच्चों को कि दे दान तो छूटे ग्रहण। पहले ब्राह्मण कहते थे, अब भी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन अब सच्चे ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्मा वत्स हैं उनके द्वारा डायरेक्ट स्वयं भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। और सभी ब्राह्मणों की इच्छा होती है, ज्ञान लेते ही ये इच्छा होती है कि हम पांच विकारों से छूट जाएं। रक्षाबंधन पर जब बहनें राखी बांधने जाती हैं कहीं या सेंटर पर भी बांधती हैं तो अधिकतर अज्ञान काल में भाई जेब से खर्ची निकालकर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहने क्या कहती, नहीं भैया हमको ये खर्ची नहीं चाहिए। तो भाई पूछते हैं क्या चाहिए आपको, फिर तो कहते पांच खोटे पैसे दे दो। वो भाई जेब देखता है, खोटे पैसे तो जेब में नहीं है। फिर उनको दिव्य बुद्धि देनी पड़ती है कि आपके पास रखे हैं खोटे पैसे पर जेब में नहीं है, संस्कारों में है, आपके सोचने में है, आपके दृष्टि में है, आपके वृत्ति में है। वो खोटे पैसे हमें चाहिए क्योंकि उनके आपके पास रखने से आपको कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। फिर उनको स्मृति दिलाते हैं कि ये पांच विकार रूपी जो खोटे पैसे, तो सबसे पहला दान जो हम ज्ञान के बाद, ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद सीखते हैं कि स्वयं को बुराइयों से छुड़ाने के लिए, स्वयं को माया के ग्रहण से बचाने के लिए, स्वयं को सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने के लिए شیو بابا کو سچی دل سے پانچ وکاروں کا دان دے دیتے ہیں. سبھی نے دے دیا ہوا ہے نا, اور دان دینے سے کیسے چھوٹ جاتے ہیں, مکت کیسے ہو جاتے ہیں, یہ سبھی کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز دان دے دی جاتی ہے اس پر اپنا حق نہیں رہتا ہے, پھر دان دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. تو بابا ہمیں بیچ بیچ میں سمرتی بھی دلاتے رہتے کہ دان دی ہوئی چیز جو ہے واپس تو نہیں لے لیتے, پھر کبھی تو ناراضگی نہیں ہو جاتی, پھر کبھی تو غصہ نہیں آ جاتا, پھر کبھی تو موڈ ایسا تو نہیں بن جاتا. تو وہ ایک پرکار سے بابا پرپک کرتے ہیں کہ آپ نے جو دان دیا ہے اس کو واپس نہیں لینا, کیونکہ بابا کے وارث ہیں تو کبھی کبھی بھول سے لے لیتے ہیں. بابا کے وارث ہیں تو وارث مانا جو بابا کے پاس ہے وہ شاید سمجھتے ہیں اس پر حق تو ہے ہمارا, پر بابا کہتا ہے نہیں, یہ آپ کی دان دی ہوئی چیز جو ہے اس پر اب آپ کا حق نہیں ہے. تو پہلا دان سوئم کو مکتی, سچی سچی مکتی اور جیون مکتی دلانے کے لیے ہے. پھر اس کے بعد سچا گیان دھن کا جو دان ہے اس کے دینے کی بات آتی ہے. تو بابا کہتے وہ دان کس کو دینا ہے, برہمنوں کو تو ہے ہی, وہ برہمنوں کے پاس تو گیان دھن سوئم کو پراپت ہو چکا ہے. برہمنوں کو ایک دو کو دان نہیں کرنا ہوتا ہے, لیکن جن کو ابھی تک باپ کا پریچے نہیں ہے, جو ابھی تک اگیان نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور اس کے کارن ٹھوکریں کھاتے ہیں, اس کے کارن دکھی ہیں, اس کے کارن اشانت ہیں, ان کو یہ گیان دھن دینے کی بات ہے. تو مہادانی کون بن سکتا ہے, جس نے سوئم اچھی طرح سے اپنے کمبھ میں کہو یا بدھی روپی کلش میں کہو گیان امرت کو اچھی طرح دھارن کیا ہوا ہے. جو سوئم گیانی تو آتما بن گئے ہیں, جو سوئم یوگی تو آتما بن گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے جیون میں اس کی دھارنا کر کے اپنا جیون ایسا سریشٹ بنایا ہے, اور سریشٹ بنانے کے فل سروپ گیان دھن کے خزانے کے فل سروپ اور گنوں کے خزانے کے فل سروپ اندر اپنے اندر اچھی طرح سے ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا دھنوان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اویناشی گیان دھن کا جو خزانہ ہے, دیوے گنوں کا جو خزانہ ہے, دیوے شکتیوں کا جو خزانہ ہے, اس سے ہم آتمائیں بھرپور ہیں, اور اس کے فل سروپ سوئم محسوس کرتے ہیں کہ سنسار میں کتنا بھی کوئی لوکک ریت میں دھنوان ہو پر ہمارے جتنا دھنوان کوئی نہیں ہے. بابا کے جو مہا واقعے ہیں کہ بچے میں جو آپ کو یہ گیان رتنوں کا خزانہ دیتا ہوں, ورثے کے روپ میں دیتا ہوں, ٹیچر کے روپ میں دیتا ہوں, اس گیان رتنوں کی قیمت ایک ایک کی لاکھوں ہے, اور گیان کا ساگر پورا ساگر ہمیں دے دیتا ہے. بابا کہتا پہلے تو کہتے تھے بھگوان بے انت ہے, لیکن آپ بچوں کے لیے بے انت نہیں رہا, جو باپ کے پاس خزانہ وہ سب کا سب آپ کو دے دیتا, خود کے پاس کچھ نہیں رکھتا اور دیتا ہی رہتا ہے. تو جو اس گیان کی گہرائی میں جاتے ہیں और इसको जीवन में अपना करके अप्लाई करके उसका सच्चा सच्चा सुख प्राप्त करते हैं और उसके फलस्वरूप जो पावन जीवन बनती है, पवित्र जीवन बनती है, उससे जो अति इंद्रिय सुख प्राप्त होता है उसका अनुभव करने वाले महसूस करते हैं कि हमारे जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं। उसकी अगर कमी होगी तो अंदर में थोड़ा थोड़ा खालीपन महसूस होगा, लेकिन जिन्होंने को ज्ञान अमृत का अच्छी तरह से रस बैठ गया है, जो उसके बिना रह नहीं सकते, सुबह उठते ही बाबा की याद का आनंद लेते हैं और ज्ञान रत्नों का जो खजाना है मुरली, वो मुरली के बिना रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे तो ऐसा लगेगा आज कुछ खो गया है, खाली खाली लगेगा, जैसे भूखे रहे अंदर से ऐसा महसूस करेंगे। उनको ज्ञान रत्नों के खजाने की वैल्यू है, तो जो मुरली के अध्ययन से रोज अपने खजाने में वृद्धि करते रहते हैं, हम तो हंसी में कहते हैं इतना तो कमाई किसी की नहीं है संसार में, एक मुरली सुनो, एक मुरली के अंदर कम से कम 20-25 पॉइंट होती है और एक एक पॉइंट की कम से कम भी 1 लाख रुपया आप कीमत मान लो तो रोज आपके खजाने में कितना जमा हो रहा है, 25 लाख तो हो ही जाता है कम से कम। किसी की भी आज प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी भी इतनी तनख्वाह नहीं है। बाबा की बात कभी कभी सोचते हैं, शुरू शुरू में बाबा ने न्यूज़पेपर में डाला था कि हु इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे धनवान दुनिया में कौन है, पहले क्वेश्चन डाला एडवर्टाइजमेंट में और दूसरे दिन फिर उसका उत्तर खुद ही लिखवाया, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ओम मंडली माना कौन? आज ओम मंडली नहीं कहते पर ओम शांति वाले कहते, कि ओम शांति वाले जा रहे हैं, ओम शांति वाले ये कहते हैं। तो आज जिसको इस ज्ञान रत्नों की अच्छी तरह परख है और उन ज्ञान रत्नों का खजाना अच्छी तरह अपने पास है, उसको ये महसूस होगा कि हमारे जितना धनवान कोई नहीं है। और धनवान होने के साथ साथ फिर बेहद बाप से एक विशेष संस्कार वर्षे के रूप में हम सबको मिला हुआ है, कौन सा? विश्व कल्याणकारी का। हम सभी बाबा के बच्चे भले रहते अपने गांव में हैं, रहते अपने घर में हैं, लौकिक कारोबार करते हैं, लेकिन बाबा ने वरदान के रूप में कहो, वर्षे के रूप में कहो, हर एक बच्चे को ये वरदान दे दिया है कि आप बाबा के समान, बाप के समान विश्व कल्याणकारी हो। कहां पर भी बैठे हो, बाबा की याद में बैठते हैं, सारे विश्व को पावन बनाने में मदद करते, ज्ञान का अध्ययन करते हैं और अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो सारे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं, एक मिसाल बन जाते हैं कि ईश्वरी जीवन क्या है, दिव्य जीवन क्या है, दैवी जीवन क्या है, मनुष्य से देवता बनने का अगर किसी से कुछ सीखना हो तो ये हमारे सामने मिसाल है। और फिर इसके साथ साथ तो हर एक के प्रति शुभ भावना रहती है मन में, और शुभ भावना किस लिए? कि ये भी ज्ञान प्राप्त करें, ये भी दुखों से छूट जाएं, इनकी भी अशांति खत्म हो जाए, ये भी बाबा से अपना अधिकार प्राप्त करें, ये भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव करें। ऐसी शुभ भावना जो है वो सभी में नहीं रहती है दुनिया में, वो बाबा के बच्चों में रहती है, जो सच्चे सच्चे बच्चे। तो विश्व कल्याणकारी का संस्कार बाबा से प्राप्त ہونے کے فلسوروپ اور بابا سے ورثے کے روپ میں جو اتنا گیان دھن گنوں کا دھن شکتیوں کا دھن پراپت ہوا ہے اور وشو کلیانکاری ہونے کے کارن جو سیوا کا سنسکار سب کے من میں آ جاتا ہے سوتہ ہی آ جاتا ہے کہ ہمارے جیسے اور بھائی بہنیں سنسار میں ان کو بھی ہم بابا کا یہ دھن بانٹیں کیونکہ دان کا سنسکار جیسے میں نے پہلے بتایا وہ بھکتی سے بھی چلا آتا ہے دان اس کو دیا جاتا ہے جس کو ضرورت ہے جس کو کمی ہے اور اس کی بہت اس کا مہتو ہے کئی پرکار کا دان کرتے رہے اور سبھی جانتے بھی ہیں کسی کی جیون بچانی آج بھی ایسے ہے جیون بچانی ہے تو رکت کا بھی دان کرتے ہیں اور غریب کو دھن کا دان کرتے ہیں اسی طرح سے شکشا کا لیکن بھکتی میں بھی گائن ہے کہ سب دان میں شریشت دان کون سا ہے نام کا دان کہتے ہیں بھگوان کا نام یاد دلاتے ہیں تو نام ارتھات پرماتما کی یاد تو اسی طرح سے بابا کے بچوں کے لیے بھی ورتمان سمے سب سے بڑا دان جو ساکار بابا کے دنوں سے ہی ہم لوگوں کو بہت بابا کی جیون کو دیکھ کر کے بابا کے پریکٹیکل ایکٹیویٹی کو دیکھ کر کے سیکھنے کو ملا کہ بچے گیان کا دھن جو ہے یہ سب سے شریشت دھن ہے اور اس سے منشیہ سے دیوتا بن جاتے اتنا شریشت ہے یہ اس کا دان سب کو بلکہ اتنے تک کہ آپ کا جو وناشی دھن ہے اس کو بھی کنورٹ کرو اس کو بھی اوناشی گیان دھن دان کرنے کے لیے اس کو انویسٹ کرو اس کا بیج بو آج کی مرلی میں بھی تھا اس کے لیے سینٹر کھولو مکان بناؤ سینٹر کھولو بلکہ بابا تو اس طرح سے کہتے تھے ان دنوں میں کہ بچے مکان بنانے میں خرچہ بہت لگے گا اتنے خرچے میں آپ ایک کی جگہ پانچ سینٹر کا کرائے پر لے کر کے مکان پانچ سینٹر کھول دو اور مجھے ایک بار کی بات یاد آتی ہے دہلی میں ایگزیبیشن تھی پہلی ایگزیبیشن دلی میں جب رکھی کمیونٹی ہال میں تو بابا نے سوئم وہ ایگزیبیشن دیکھی اور دیکھنے کے بعد جب لٹریچر سٹال پر پہنچے تو جو بھائی وہاں نمت تھے ان کو کہا یہ سارے لٹریچر کا ایک سیٹ مجھے دے دو تو اس بھائی نے ایک ایک کتاب لے کر کے سب اکٹھا کیا کہا اچھا اس کا کتنا حساب ہے بتاؤ مجھے تو بیچارہ وہ ایک ایک کا لکھتا گیا چار آنے آٹھ آنے ایک روپیہ ایسے کر کے سارا حساب نکالا تو اس کا حساب بنا تھا کوئی 17 روپے کچھ پیسے تو بابا نے کہا بس پھر بابا نے اشارہ دیا کہا بچے اگر میں تمہاری جگہ پر سیلز کاؤنٹر پر ہوتا تو میں کیسے اس کا حساب رکھتا وہ بتا دیتا جب کوئی بابا کی طرح سامنے آتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے سیٹھ جی غریبوں کو تو یہ فری بانٹا جاتا ہے آپ کی جو اچھا ہو اتنے کا آپ لٹریچر چھپوا کر کے بٹوا سکتے ہو تو ایسا مجھے جواب ملتا تو میں تم کو 500 روپیہ دے کے جاتا تو بابا یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کسی کا بھی دھن جو ہے اس کا ادھک سے ادھک لوگوں کو لابھ کیسے ملے تو مہادانی شبد کا ارتھ ہے جو کسی کو مہان بنانے کے لیے دان ایک دان دینا ہے کسی کا تھوڑا ٹائم کے لیے اس کو ریلیو کرنا اس کی جو پرابلم ہے اس سے بھائی بھوکا ہے اس کو آپ نے لنگر کھولا ہوا ہے وہاں اس کو بھوجن کرا دیا وہ بھی اس میں دان دیتے ہیں تو ہی ہو سکتا ہے تو بھوک اس کی مٹا دی لیکن وہ مہان نہیں بنا وہ ڈیپینڈنٹ بن گیا ہر روز وہیں جا کر کے لنگر کرنا ہے اس کو لیکن ایسا ان کو दान करो जिससे वो सीखें कि हम अपने पांव पर कैसे खड़े हों, बल्कि पांव पर ही नहीं बाबा तो कहता सारे विश्व के मालिक बन जाए। ऐसा महान दान कराने का तरीका बाबा सिखाता है। तो महान दान करना, महादानी बनना, अर्थात ऐसा दान जिससे दान करने वाला भी महान और जिसको दान मिले वो भी महान बन जाए, और वो है सच्चा सच्चा ज्ञान धन का दान। बाबा ने तो साथ में मिला दिया, हम तो ज्ञान के दान में सब मान जाते, लेकिन बाबा कहता नहीं, ब्राह्मण होकर के ज्ञान का दान, फिर इसके साथ में गुणों का दान सबसे बड़ा दान है, आप समान गुणवान बनाना किसको, और फिर कमजोर को शक्ति दिलाना, इतनी हिम्मत नहीं होती कईयों में, तो शक्ति का दान। और इन सब के लिए आपको अपना संकल्प भी यूज करना पड़े तो संकल्पों का दान, फिर उसके साथ में समझाने करने के लिए टाइम भी देना पड़ता है, समय का दान, और साधन भी चाहिए। जैसे आज मुरली में सुबह बाबा ने कहा, अच्छा आपकी दुकान है, दुकान पे ये चित्र भी रख दो, जब कोई आपके पास कोई ग्राहक आते हैं उनको जो कुछ देना है दुकान से वो भी दे दो, और साथ में उनको बताओ कि ये अविनाशी ज्ञान धन जो है उसके ज्ञान रत्नों की भी बात आपको हम देना चाहते हैं, लेकिन इसके पैसे नहीं लेंगे आपसे। तो चित्रों का भी, क्योंकि जब ये प्रदर्शनी के चित्र जब से बने हैं बाबा को बहुत पसंद आए, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सहज लोग समझ सकते हैं, तो चित्र छपवा करके सबको दो। और बाबा तो कहते थे ये जो बैज है त्रिमूर्ति का, ये छोटी गीता है, गीता का सार इसमें है, रचता और रचना का ज्ञान सारा इसमें है, ये आप लाखों की संख्या में छपवा करके बैज बना करके किसी को समझा करके गिफ्ट के रूप में दो, ये है बहुत बड़ा दान, महादान है ये, क्योंकि इसको जानने से इसको समझने से मनुष्य क्या से क्या बन सकता। तो बाबा का देखो सोचना किस तरह का, बाबा की दृष्टि दिन के ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो बाबा ने बहुत अच्छी बात उसमें सुनाई थी। देखो बाबा ने जब साक्षात्कार किया कि बाबा इस ज्ञान से क्या बनने वाला है, और शिव बाबा का हुक्म हुआ तो अपना तन मन धन सब विश्व सेवा में लगा दिया। उसके बाद शिव बाबा ने कैसे सब संभाला है और क्या से क्या बना देता है, तो बच्चों को बाप को फॉलो करना चाहिए। वो बात हमें ऐसी दिल में पहली मुरली सुनने से लग गई, और मन में आता था बाबा का तो इतना बड़ा बिजनेस था, इतनी कारोबार थी, परिवार था, उनके लिए तो मुश्किल था उस समय, फिर भी बाबा ने इतना सब कुछ सरेंडर किया, हमारे लिए क्या डिफिकल्टी। लेकिन भाव यही है कि अगर बाप के समान, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण से पूछें कि इस समय का लक्ष्य क्या है तो सबके मुख से एक ही बात सुनने को मिलती है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है, यही कहते हैं ना सभी, कोई एक भी कहे कि नहीं हम ऐसा नहीं कहते हैं। तो ऐसा महान बनने के लिए फिर बाप के समान महादानी भी बनना, तो अखंड महादानी अर्थात ब्रह्मा बाप के समान, एक तो अपने निश्चय में सदा अखंड रहे, कितनी भी परीक्षा आए हिले नहीं, हमारे निश्चय में कभी कमी ना आए, भक्ति में भी ऐसा निश्चय करने वाले जान तक अपनी बाजी लगा दी उसकी, लेकिन अपने निश्चय में अटल रहे थे। तो इसी तरह से बाबा के बच्चे बने हैं, निश्चय किया है तो उस निश्चय में सदा अखंड रहें। बाबा का तो एक मुझे वो पत्र भी याद आता है, वाणी में भी आता था, बच्चे अखंड अटल निर्विघ्न 100% पवित्रता सुख शांति संपन्न दैवी स्वराज आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन वो अधिकार मिलेगा कैसे, जब ऐसे अखंड निश्चय हो, अटल निश्चय हो और साथ में अखंड महादानी बन करके बाप के समान अपना तन मन धन समय हर समय ये स्मृति में रहे, हम विश्व कल्याण के निमित्त विश्व सेवाधारी हैं, तो उस बात सिद्ध हो सके। तब हमेशा अपने ऊपर अटेंशन रहता है, हम विश्व सेवाधारी हैं, सारे विश्व के सामने एग्जाम्पल हैं और सारे विश्व के कल्याण के लिए निमित्त हैं। हमारे संकल्प में भी कभी किसी के लिए कोई ऐसा ख्याल ना आ जाए, कभी मुख से ऐसा शब्द ना निकल जाए जो किसी को दुख दे, बल्कि हमेशा ऐसे ही शब्द निकले जो दूसरे को भी वो बाबा के ज्ञान रत्न ही मिलते रहे, दूसरी कोई बात ना। तो उमंग उल्लास में खुद रह करके और सदा इस स्मृति में रह करके जब हम अपने तन को मन को और धन को जो विनाशी है इसको भी अविनाशी सेवा के तरफ डाइवर्ट करते जाएं, लगाते जाएं, और बाबा का जो संदेश है, बाबा ने कहा बच्चे कोई एक भी आत्मा इस संसार में ना बचे जो कहे कि मुझे बाबा का संदेश ना मिला, उस कार्य को पूरा करने के लिए हम सदा ही उमंग उत्साह में रहें। और प्रैक्टिकल देखते हैं ना, दादियां इतनी बड़ी उम्र में, जानकी दादी को देखते हैं, बड़ी दादी को देखते हैं, दूसरी दादियों को देखते हैं, तो वो अपने शरीर की संभाल का भी इतना ध्यान नहीं, बाबा आप ही संभालता है। हंसी हंसी में कह देते बाबा ने अपना कार्य कराना है, वो आप ही संभालेगा। लेकिन बाबा कहता नहीं, अपने डॉक्टर भी खुद बन करके अपने आप को संभालते भी चलो, लेकिन उनका एग्जाम्पल भी सामने रहता है। जैसे वो उम्र का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हर समय दिल में उनको यही रहता है, बस बाबा के ज्ञान रत्न बांटते जाएं, बाबा का संदेश सबको देते जाएं, और उसमें खुशी कितनी है। दान देने का फल प्रैक्टिकल महसूस होता है, जिसको देते हैं उसका चेहरा खिल उठता है, और जब आप किसी को देते हैं तो आपका भी चेहरा, आपका भी दिल खुश होता है, प्रैक्टिकल देखते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि सेवा का फल कहो, दान का फल कहो, महादान का फल कहो, वरदान का फल कहो, प्रत्यक्ष फल क्या है, खुशी, और फिर इसके साथ साथ अविनाशी फल है कि एक प्रकार से आप इतनी आत्माओं को जब संदेश देते जाते हैं तो सबके दिलों को जीतते जाते, उनके दिल पर राज करते हैं जैसे, तो जब ऐसा दिलों पर राज करेंगे तो भविष्य में भी डबल सिर ताजदारी बन के विश्व के महाराजन बन करके राज अधिकारी बनेंगे। ऐसा महादानी बनने का जो बाबा ने संकल्प दिया है उसको सिद्ध करेंगे। तो ऐसा बाबा के सन्मुख आकर के इस बार यही वरदान लेके वापस जाना है। ओम शांति।